بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين.
हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं, और हम आप ही की इबादत करते रहेंगे और आप ही से मदद चाहते रहेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन. मैं बुनियादी बुनियादी जो मजामीन आए, जो बातें आई, उसमें ये था कि अल्लाह पाक हमारी हाजतों के पूरा करने वाले हैं और इंसान मोहताज है. इंसान अपने पास्ट को देखे तो उस ज़माने में भी मोहताज था अपने वजूद और बाकी हर चीज़ का. इंसान अपना प्रेजेंट देखे, हाल देखे, उसमें भी मोहताज है हर चीज़ का. जिससे भी वो फ़ायदा उठा रहा, जिस नुकसान से भी वो बच रहा है, वो अल्लाह की रूबियत का करिश्मा है इस बुनियाद पर. और इंसान आइंदा अल्लाह की रहमतों का मोहताज है मुस्तकबिल में, अब से मुस्तकबिल, दुनिया का मुस्तकबिल भी और इस दुनिया का मुस्तकबिल आखिरत के लिहाज से भी. हर एतबार से, हर जमाने के लिहाज से, हर लम्हा जब मखलूक अल्लाह की मोहताज हुई तो मोहताज का काम क्या है? अपनी एहतियाज को जाहिर करना. इय्याका नअबुद, हम आप ही की इबादत करते हैं, अपनी एहतियाज का इजहार है. अपनी एहतियाज का मतलब है हम जरूरतमंद और फकीर हैं, अपने हम मोहताज हैं, हम आपके भिखारी हैं, हमें आपकी ज़रूरत है और हम आपके हुक्मों पर चलने के पाबंद और मजबूर हैं कि उसके सिवा हमारे पास चारा नहीं है. हम इस मजबूरी को अपने इख्तियार से चूज करते हैं, हम इस मजबूरी को अपने इख्तियार से चूज करते हैं. यह है मजबूरी कि कोई और नहीं है जिसको हम जिसकी हम इबादत कर सकें, तो ये मजबूरी हो गई. लेकिन इस मजबूरी को हम इख्तियार से करते हैं. इसमें एक लफ्ज आता है इय्याका नअबुद, नअबुद इबादत से या उबूदियत से. इबादत का माना क्या है? इबादत का माना है ऐसी आजिजी और जिल्लत इख्तियार करना जिसमें अजमत शामिल हो और जिसमें इताअत और इत्तबा शामिल हो. अजमत अगर नहीं है, ताजीम अगर नहीं है, तो फिर इबादत नहीं होती हो. तजल्लुल, आजिजी इख्तियार नहीं की जा रही, तो फिर इबादत नहीं होती हो. इंतहाई दर्जे की आजिज़ी इख्तियार करने का नाम इबादत है. अब इंतहाई दर्जे की इबादत आजिज़ी कैसे इख्तियार की जाती है? उलमाए किराम ने इबादत के ज़िम्न में जो बातें बताई हैं उनमें गौर करें, वो इंतहाई दर्जे की इबादत ही पाई जाती है, आजिज़ी ही पाई जाती है उसमें. इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह के तरफ मंसूब करके उनके किताबों के में ये बात लिखी भी मिलती है कि कई बातों को उन्होंने इबादत के ज़िम्न में शामिल किया कि ये इबादत है, ये इबादत है, ये इबादत है. इय्याका नअबुद, हम आपकी इबादत करते हैं. इबादत में क्या करते हैं? तो उन्होंने उसको थोड़ा सा खोल के समझाया तवस्सो के साथ में. तो उसमें उन्होंने हमारे जो अरकान हैं इस्लाम उसको जिक्र किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूकुल जार, पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो, कस्बे हलाल, हलाल का कमाना है वो, और अमर बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है, तबलीग इस्लाम है, तबलीग मारूफात है और नहीं अनिल मुनकरात है. ये सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने जिक्र की, तिलावत और जिक्र वगैरह, नज़र, कुर्बानी, कसम, अल्लाह के नाम की खाना और अल्लाह के नाम पे ये सब करना, इसको उन्होंने इबादत में जिक्र किया. तो आप देखें इन चीज़ों के अंदर वो इंतहाई दर्जे की आजिज़ी ही पाई जा रही. जैसे नमाज में आदमी क्या कर रहा है? अपने सबसे अशरफ, सबसे मरतबे और रुतबे वाला जो हिस्सा है उसकी पेशानी का, वो उसको अल्लाह के आगे, अल्लाह का तसव्वुर करके वो अपनी ज़मीन पर रख देता है, उस हिस्से को ज़मीन पर रख देता है. हदीस शरीफ में भी आता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो बैन कदमय रहमान होता है, अल्लाह के दो कदमों के बीच. किस कदर हसीन तसव्वुर है गौर करें ज़रा, अल्लाह को सजदा करें. बेशक अल्लाह कदमों से पाक हैं, लेकिन हदीस शरीफ में कदम का लफ्ज़ आया है तो उसका जो भी मफहूम है हम उस पर ईमान लाते हैं और उसी तसव्वुर से, यानी अनजाने तसव्वुर से हम खुश होते हैं. बैन कदमय रहमान, बंदा सजदा करता है. किसी के पैरों में पड़ जाना इंतहाई आजिज़ी है. रोज़े को देख लें, रोज़े के अंदर भूख प्यास को बर्दाश्त करना, ख्वाहिश को अपनी दबा के रखना, भूख की, प्यास की और ख्वाहिश नफ्स को, इन सब चीज़ों को. अब अल्लाह के लिए ये सब कर रहे हैं, किसके लिए छोड़ा जाता है? जिसके लिए अपनी जिल्लत बर्दाश्त की जाती है उसके लिए छोड़ा जाता है. जिससे मोहब्बत की जाती, मोहब्बत के आगे अरे हमारी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा हम उसके आशिक, वो हमारा माशूक, तो अपने माशूक की खातिर उसके इश्क में हम ये चीज़ बर्दाश्त करने तैयार है. ज़कात को देख लें, हमारा हमारा माल उसके नाम पर कुर्बान. हज को देख लें, हज का तो हर हर रुकन, हर हर अदा, हर हर मनसक जो नुसुक इबादत का तरीका है, अब जाके देख लें, और सही सफा मरवा की सही, वो हजर अस्वद का बोसा, और मुजदलिफा को کے اندر جا کے راتوں کا قیام کرنا، منا کے اندر جا کے قیام کرنا، عرفہ کے اندر دھوپ کے اندر کھڑے ہو جانا، جا کر کے پتھروں کو کنکر مارنا، اور پھر کعبے کے گرد طواف کرتے جانا، ہر ہر ادا کے اندر محبت کا اور فدائیت کا، فدویت کا مظہر پایا جاتا ہے ہر ادا کے اندر. تو وہاں پر تو اللہ کے ساتھ میں اپنے عشق اور اپنے تعلق کو دکھایا جاتا ہے، یہی سمجھایا جا رہا وہاں پہ بھی کہ ہمارا جان، ہماری مال، ہمارے جذبات سارے کے سارے اللہ کے واسطے، یہ عاجزی کا مظہر. جانور کو ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جان جس کی ہے، اس جان کا مالک جو ہے، اس جان کا نکلنا چاہیے پھر اس مالک کے نام پہ، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر. مرغیاں ہوں، بکرے ہوں، بکریاں ہوں، لیمب ہو، گوٹ ہو، کچھ بھی ہو، ویل ہو یا بیف ہو، جو بھی ہو، اونٹ ہو، کچھ بھی حلال جتنے جانور ہیں سارے کے سارے اس کے اندر نکلنے چاہیے. تو قربانی کے اندر اور ذبح کے عمل کے اندر عاجزی کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو جیسے ظاہری اعتبار سے اللہ کے سامنے عاجزی والے اعمال اختیار کرنا عبادت ہے، دل کے اندر اپنی بعض جذبات اور کیفیات کو بھی اس طرح عقیدے کی صورت میں راسخ کر کے جمع لینا اور دل میں بٹھا لینا بھی عبادت سے باز رکھنے والے کیفیات ہیں، تعلق رکھنے والے. جیسے کسی سے اتنا ڈرنا جتنا ڈرنا اللہ کا حق ہے، کسی سے اتنی امید رکھنا جتنی امید رکھنا اللہ کا حق ہے، کسی پہ بھروسہ کرنا اتنا بھروسہ کرنا جتنا اللہ کا حق ہے، یہ سارا کس کے اندر آتا ہے؟ یہ سارا غیر اللہ سے تعلق جوڑنے، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں آتا ہے. یعنی صرف ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا عمل کرے گا، کام کرے گا جو عبادت کہلاتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ، اگر یہ غیر اللہ کی ہوگی تو یہ شرک ہوگا، صرف اللہ کی ہوگی تو توحید ہوگا. صرف ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ دل کے بھی بعض کیفیات ایسی ہیں کہ اگر ان کیفیتوں میں غیر اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو وہ بھی پھر توحید سے اور اسلام سے آدمی کو، ایمان سے آدمی کو باہر کر دیتے ہیں. طمع، امید، کس چیز کی؟ خیر کی امید، یہ صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. کوئی وسیلہ اگر ہم کسی درجے میں، سبب کے درجے میں اختیار کرتے ہیں تو وہ وسیلے کے درجے میں ہی ہونا، اس سے ایسا کنیکشن ہمارا نہیں ہو جانا، اس سے ہمارا ایسا گہرا مضبوط تعلق اور رشتہ نہیں جڑ جانا جیسا کہ اللہ سے جڑنا چاہیے. محبت اللہ کا حق ہے، خوف اللہ کا حق ہے، عظمت اللہ کا حق ہے، اور ڈر اللہ کا حق ہے، توکل اور اعتماد اللہ کا حق ہے. تو یہ سارے رشتوں میں انتہائی درجے کا توکل، اعتماد اللہ کی ذات پر، انتہائی درجے کی محبت اور عشق اللہ کی ذات سے، انتہائی درجے کا خوف اور ڈر اللہ کی ذات کا، یہ ہونا چاہیے. ایاک نعبد کے مفہوم میں یہ ساری باتیں شامل ہوتی ہیں. دل کی جو کیفیات ہیں وہ بھی عبادت میں آتی ہیں، اور ہمارے جسم سے سرزد ہونے والے، صادر ہونے والے، ہمارے کرنے والے جو کام ہیں وہ سارے بھی اللہ کی عبادت کے اندر آتے ہیں، جس کے اندر ذلت کا مفہوم پایا جاتا، عاجزی کا مفہوم پایا جاتا. ایک عبادت کے اور اس آیت کے حوالے سے بعض تفسیروں کے اندر گمراہ فرقوں کی، مسلمانوں ہی کے بعض فکری اعتبار سے جو غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے بعض تفسیروں میں ایک غلط فہمی کا شکار ہو کے نہیں معلوم، یا کسی پروپیگنڈے کے تحت نہیں معلوم، لوگ ایک غلط فہمی کو پھیلاتے ہیں. وہ کیا؟ کہ مقلدین جتنے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں. اپنے اماموں کی بات کا ماننا تقلید ہے، اور تقلید شرک ہے، یہ بھی عبادت ہے. ایاک نعبد سے وہ یہ مفہوم نکالتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. مقلد کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بات کو نہیں لیتا، رسول کی بات کو نہیں لیتا، امام کی بات کو لیتا ہے. تو وہ اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، اس بنیاد پہ وہ اللہ رسول کو چھوڑ دینے کے بعد اس کے ہاتھ میں بچ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر ایمان نہیں بچا، اسلام نہیں بچا، دین نہیں بچا، پھر کیا رہ گیا وہ؟ تو غیر اللہ کو ماننے سے کوئی کیا ہوتا؟ مشرک ہوتا. لہٰذا مقلدین سارے کے سارے مشرک ہیں، وہ یہاں سے نکلا ہو. ابھی تو یہ فتنے تھوڑے کسی قدر دبے ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر، لیکن ماضی قریب کے اندر بہت زیادہ پنپے ہوئے تھے، اس کے بہت چرچے تھے، تقلید کو شرک بول دینا، مقلدین کو مشرک بول دینا، اماموں کو مقلدین کا خدا بول دینا، اس قسم کی باتیں عوام الناس کے اندر بھی بہت سارا اس کا زور چل رہا تھا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ تقلید کرنا، اماموں کی بات ماننا، ان کی تشریحات کو کے اعتبار سے اپنے خود کو پابند بنانا اعمال کا، اس کو جنہوں نے شرک سمجھا، کیوں سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ رسول کو چھوڑ کے ان کی بات نہیں مان کے یہ اماموں کی بات کو مانتے ہیں، یہ انہوں نے سمجھا. حالانکہ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہی سب سے بڑی غلط فہمی کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امام کی بات کو ماننا اللہ کی بات کو نہیں، رسول اللہ کی بات کو نہیں. جہالت ان کی ہے، اور الزام جو ہے مقلدین کو دیا جا رہا. بعض دفعہ کیا ہوتا، آئینہ صاف کیے جاتے، ارے بھائی چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا، آئینہ کلین کر رہے، کلین کر رہے، کلین کر رہے. बोले नहीं, धूल आईने पे नहीं चेहरे पे है, तो यहां साफ करने की जरूरत होती है। तो जहालत का भी यही हिस्सा है कि अपनी जहालत दूर करें तो फिर दूसरों के पास में जो खूबी है वो नजर आएगी। बाकी रहा हम मुकल्लिदीन जो इमामों की इत्तबा करते हैं, उस तकलीद को फिर हम क्या नाम दें, सही नाम क्या दें कि उनको समझ में आए। तकलीद को हम सही नाम ये दें कि दीन की, कुरान और हदीस की जो तशरीह ये इमाम करते हैं उन तशरीहात पे एतमाद का नाम तकलीद है। बस ये जो ट्रस्ट कर रहे हैं, बस इस ट्रस्ट का नाम तकलीद है। बात किसकी मान रहे, इमाम अबू हनीफा की नहीं, इमाम शाफी की नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक की, इमाम औज़ाई की, इमाम लैस की, इमाम दूसरे और अइमा की जो मुकल्लिदीन मुज्तहिदीन हुए उनकी नहीं, किसी की भी नहीं। बात मानी जा रही है किसकी, अल्लाह की। बात मानी जा रही है किसकी, अल्लाह के रसूल की। तो फिर ये क्या है, ये जो है उनकी बातों का मतलब बताने वाले लोग हैं, ये उनकी बातों का मतलब बताने वाले लोग हैं। तो हम इन्होंने जो मतलब बताया उस पर एतमाद करते हैं कि इनका बताया हुआ मतलब सही है, हम इस हिसाब से अल्लाह की इबादत करेंगे। उन लोगों को यानी तकलीद को, शिर्क करने वालों को बाज दफा मुकल्लिदीन ही के पास से मवाद मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, इल्जाम देने की सूरत मिल जाती है। हुआ वो, लेकिन एक अच्छे अंदाज से हुआ था, अच्छी बात का भी कभी गलत मतलब निकाल लिया जाता है अपने अपने हिसाब से, अपने मंशे के मुताबिक। यहाँ पर भी वही हुआ, अइमा मुज्तहिदीन ने और बिलखुसूस अहनाफ ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह और उनके मानने वालों ने कुरान और हदीस पर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है और हदीसों पर, हदीसों की इतनी जांच पड़ताल उन्होंने की है, सही और गलत को परखने की इतनी कोशिश उन्होंने की है कि उनके मजहब में अब जो कुछ है वो सिर्फ खरा है, खोटा नहीं है। उनकी बताई हुई तशरीहात में अब हर चीज लायक इत्तबा है, किसी को फिर से जांचने की जरूरत नहीं है। ये असल बात है। इस बात को उन्होंने किस अंदाज से पेश किया, उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे मजहब में मजहब के खिलाफ अगर कोई हदीस मिले तो वो हदीस या तो अपने जाहिरी माना पर नहीं है या वो हदीस सही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे मजहब को जो तैयार किया गया, मसलक को जो मुदव्वल किया गया, इसकी जो तशरीहात की गई है, इतनी जांच पड़ताल के बाद की गई है, सारी चीजों को खंगाल के की गई है, तो जो सबसे सही हो सकता था वो ले लिया गया। अब हमारे मजहब में जो चीज है वो सबसे सही है, अगर उसके अलावा कुछ तुमको नजर आता है तो या तो वो मुअव्वल है यानी जाहिर में हदीस जैसी लगती है उसका माना वो नहीं है, या फिर वो हदीस जो है ना सही नहीं है, सनद के एतबार से कमजोर है, इस दर्जे की नहीं है क्या मुझसे इस्तदलाल कर सके। तो अब मिल गया बहाना लोगों को, ये देखो इमाम के कौल के आगे हदीस का भी इनके पास में दर्जा नहीं, यहां से निकली बात। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी ये है कि इन लोगों ने इतनी तहकीक की, इतनी जान खपाई, इतना उन्होंने पैसा खर्च किया, इतनी लोगों की सलाहियतों को और वक्त को लगाया है यहां पर कि अब इसके बाद तुम मजीद कोशिश करके इसे बेहतर नहीं ला सकोगे। ये बोलने का मतलब था, उसको इस अंदाज से बोला गया तो गलत मतलब में ले लिया। अच्छा भाई, अब हम हनाफ हैं, हम इमाम हनीफा के रहमतुल्लाह अलैह के फॉलो करने वाले हैं, तो हम तो यही बोलेंगे, उनकी बातों का ऐसे ही मतलब निकालेंगे, कोई बाहर से कोई गवाही लाओ ताकि हम भी मान सकें। अल्फजलुमा शहीदत बिहिल आदाउ, कमाल तो वो है कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दे, जादू वो जो सर चढ़ के बोले वाला हिसाब। तो थोड़ा सा इस बारे में बात हो जाए ताकि ये बात क्लियर हो जाए, यानी अइमा मुज्तहिदीन के पास और बिलखुसूस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास में हदीस का इल्म था या नहीं, आमतौर से ये उठा दिया जाता है, इनमें 17 हदीसें आती सिर्फ, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 17 नहीं, हाफिजुल हदीस थे वो, हाफिजुल हदीस। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं और मुत्तफक अलैह ऑथेंटिक है सबके पास, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद सबके पास। उनकी एक किताब है तज़किरतुल हुफ्फाज़, 4 जिल्दों में, यानी उन्होंने उसके अंदर हदीस के जो जो हाफिज हैं, यानी लाख लाख हदीसें जिनको याद हैं उनका तज़किरा किया, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है कि ये हाफिजुल हदीस थे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उम्मत की वो हस्ती है जिस पर किसी ने जरा नहीं किया, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उम्मत की, इस उम्मत की, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है ताबईन में, तबे ताबईन के अंदर, कि जिनकी, जिनके ऊपर किसी की कोई जराह नहीं है, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि ये आदमी पर हमको थोड़ा सा डावाडोल नजर आते हैं किसी भी एतबार से, सबके नजदीक मुत्तफक अलैह। एक मरतबा वो अपनी मजलिस के अंदर हदीस बयान कर रहे थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सनद से, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, तो शागिर्द जो है बाहर के गैर मुखल्लिदीन की बातों से मुतासिर थे, गैर मुखल्लिदीन उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, غیر مخلدین 200 سال پرانی پیداوار ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت حاسد سے, بہت ہی زیادہ. تو وہ لوگ اس سے متاثر تھے شاگردوں میں, انہوں نے کاپیاں بند کر دی اپنے کہ ہم یہ حدیث نہیں لکھتے, ان کی حدیث سے ہم کیا لکھیں. انہوں نے کہا میں تم سے ایک مہینہ حدیث نہیں بیان کرتا, تم کس قدر بے ادب ہو گئے اہل علم کے. ان کو سزا دی. کیا سزا دی؟ تم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نہیں چاہیے تو حدیث کا درس ہی تم کو مہینہ بھر نہیں دوں گا میں. ابو حنیفہ کیا کسی بھی محدث کی حدیث نہیں سناؤں گا. پھر ان کو خوب لتاڑا کہ بھائی کس قدر بے ادب ہو گئے تم, کیسی ہستی کو تم گالیاں دے رہے ہو, ایسی ہستی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الحجرہ, مدینہ کو ہجرت کر کے, وہ وہاں مدینہ جو دار الحجرت ہے, ہجرت کا مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی, وہاں کے وہ امام ہیں حدیث کی لائن میں اور بہت ہی مستند ہستی ہیں. وہ امام ابو حنیفہ, کئی واقعات ہیں آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو واقعات ہیں اس کو شاید رات بھر اگر کوئی سنائے ترتیب سے تو کم پڑ جائے, اتنی کتابیں ان کی شان میں, ان کے دفاع میں, ان کے حق میں لکھی گئی ہیں. الغرض تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے. بزرگان دین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ متانت سے رہتے ہیں, وقار سے رہتے ہیں, اور امام مالک وقار اور متانت کے معاملے میں بہت آگے تھے, بہت زیادہ آگے تھے. ان کے پاس اس قدر علم کا, اہل علم کا, حدیث کا اور محدثین کا کے احترام کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ درس حدیث میں 16 مرتبہ بچھو نے ان کو کمر کے اندر پیٹ کے پیٹ پر پشت پر ڈنک مارا, 16 مرتبہ زخم کے نشان. حدیث کا درس ختم ہونے تک اف نہیں کیے حدیث کے احترام میں, ایسا احترام ان کے پاس ہے. اہل علم کا احترام بھی ویسے ہی کیا کرتے تھے. تو سوچیں ایسے لوگ کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے دو چھوٹے بچے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں ویسا دو بڑے لوگ آپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں, ویسا ہو سکتا؟ متانت والے لوگ, وقار والے لوگ ایسا کام نہیں کرتے. لیکن کسی سے محبت, عقیدت اور تعلق ہو اور وہ انتہائی درجے کی ہو تو پھر اس قسم کے جذبات ابھر آتے ہیں, اس قسم کے ہمارے مظہر دیکھنے کو ملتے ہیں, واقعات ہم ان کو دیکھنے میں ملتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے امام مالک آ رہے ہیں مسجد نبوی کے پاس, اور مسجد کے پاس پہنچ کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ پہلے چلیے. چھوٹے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے, مقام میں بھی عمر میں بھی, یہ ان کا مقام. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا مقام معلوم ہے, ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ان کو گالیاں دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. امام شعبہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں کہ سہائے ستہ جن کی دھوم اور چرچا ہے پوری دنیا کے اندر, سہائے ستہ جو بڑی کتاب ہے بخاری مسلم ترمذی نسائی وغیرہ, ان کے ہر امام اور ہر مصنف ہر لکھنے والے کے سندوں کا مدار ان کی حدیثیں ہیں. امام شعبہ, وہ شعبہ کیا فرماتے ہیں, حدثنا یا ابا حنیفہ, ہمیں حدیث بیان کریے, یعنی ان کے بھی استاد ہو گئے اس معنی میں. اور وہ کتنی بڑی ہستی ہیں, لولا شعبت لما عرف علم الحدیث, ان کی اتنی خدمات ہیں حدیث کی لائن میں امام شعبہ کی کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو علم حدیث دنیا میں متعارف نہیں ہوتا, اس قدر بڑا ان کا کام اور ان کی خدمت ہے. وہ فرماتے ہیں حدیثنا یا ابا حنیفہ. تو جو محدثین ہیں وہ محدثین یہ کہتے ہیں حدیثنا یا ابا حنیفہ. عبداللہ ابن مبارک لے لیں, امام شعبہ لے لیں, دوسرے اور بے شمار محدثین ہیں جن کے نام ان روایتوں کی سندوں کے اندر آتے ہیں, اور ان وہ لوگ ان کا اچھے سے تذکرہ کرتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, ان کی برائی کو سننا برداشت نہیں کرتے ہیں, یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ چلتا ہے. ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں, تقوی پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی فراست پر اعتماد کرتے ہیں, ذہانت پر اعتماد کرتے ہیں, اور ان کے تفقہ پر اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے جو دین کی تشریحات کی ان تشریحات پر اعتماد کرتے ہیں. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. سند کے حوالے سے اگر غور کریں تو ایک دفعہ ابو جعفر منصور نے, بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ عمن اخذت العلم, آپ نے کسے علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا عن حماد, لکھو سند میری, عن حماد, عن ابراہیم, عن عمر بن الخطاب, دو واسطے صحابی تک, عن حماد, عن ابراہیم, عن عمر بن الخطاب. تو صرف ایک ہی صحابی نہیں, وعلی بن ابی طالب, وہ عبداللہ ابن مسعود, وہ عبداللہ ابن عباس. اور میں ابن عباس کی روایتیں میرے پاس دو سند سے, حضرت علی کی روایتیں میرے پاس دو سند سے, دو واسطوں سے ہیں, حضرت ابن مسعود کی روایتیں میرے پاس دو واسطوں سے ہیں, حضرت عمر بن خطاب کی روایتیں حدیثیں میرے پاس دو واسطوں سے ہیں. اس نے کہا بخ بخ, जरूरत नहीं, इसे आगे बताने की जरूरत नहीं है। जिस जिस से जो मिलता था, जो बाबे इल्म थे, उन लोगों उनसे तुमने सब कुछ ले लिया। इब्ने मसूद हो गए, अली हो गए, उमर बिन खत्ताब हो गए, बचा क्या? इब्ने अब्बास। कैसे कैसे जिबाल इल्म थे, इल्म के पहाड़ थे। उनकी हदीसें तुम्हारे पास है तो अब किसी और से नहीं लेने का गम नहीं, ये वाला हिसाब हो गया। तो अबू जाफर मंसूर ने जब उनसे सनद बयान करने को कहा तो ये सनद उन्होंने बयान की थी। तो इल्मे हदीस में उनका मकाम ये है कि मुहद्दिसीन किबार जिन पर सनदों का मदार है, खुद सिहाय सित्ता के मुसन्निफीन को जिन पर एतमाद और सिहाय सित्ता के उस्तादों के असातिज़ा में जो आते हैं वो उनके शागिर्द हैं। एतमाद की बात जहां तक है, एतमाद की बात यहां तक है कि उनसे मुहद्दिसीन हदीस की सनद मांग रहे हैं, उनसे हदीसें सुनने को तैयार हो रहे हैं। रह गई बात वो कि जहां पर ये मुखालफत की बात आती है कि कियास को और अपनी राय को तरजीह देते कुरान पे हदीस पे, ये मसला भी हल हो गया, उसी जमाने में हल हो गया। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह, बकरुल इल्म थे, ये इल्म की गाय, कसरत की बुनियाद, बहुत ज्यादा इल्म वाले थे तो उनको बकरुल इल्म से बाकर बनाया गया था। तो इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मदीने में इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह उनसे मुलाकात के लिए गए तो पूछा तुम ही हो अंतल्लज़ी खालफता अहादीस जद्दी, मेरे नाना की हदीसों की दीन की मुखालफत तुम ही करते हो, हमने तो यही सुना है तुम्हारे बारे। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे वास्ते अजीम हस्ती हैं, आप पहले तशरीफ रखें फिर उसके बाद मैं अपनी बात आपसे अर्ज करता हूँ। उनको एहतराम से बिठाया और बिठाने के बाद फिर उनसे कहा अब बताइए मर्द कमजोर है या औरत? क्या क्या औरत कमजोर है? तो फिर अगर मदद करना है माली ताउन तो किसका ज्यादा होना चाहिए? उन्होंने कहा औरत का। आपके नाना तो कहते हैं कि मर्द की माली मदद ज्यादा होनी चाहिए, मीरास के अंदर मर्द का हिस्सा दोहरा है औरत का, औरत के मुकाबले में। अगर मैं आपके नाना की मुखालफत कर रहा होता तो मैं ये बोलता कि औरत को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए मर्द को नहीं, और औरत का हिस्सा दोगुना होना चाहिए मर्द का नहीं। एक सवाल हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए नमाज अफजल है या रोजा? उन्होंने कहा कि नमाज। चाहे फिर आपके नाना ने तो हमसे ये कहा कि औरत जब मैले सर से होगी, नमाज जब नहीं होगी, बाद में जब पाक हो जाएगी तो वो नमाजों की कजा नहीं करेगी, रोजे की करेगी। हालांकि रोजा अफजल नहीं है, मफजूल है, और नमाज अफजल है। अगर मैं आपके नाना के हदीस की मुखालफत, दीन की मुखालफत किया होता तो मैं बोलता औरत को नमाज की कजा करना चाहिए कि वो अफजल है। फिर उन्होंने पूछा बताइए पेशाब ज्यादा नापाक है या मादे तौलीद मनी, इससे आदमी पैदा होता, इंसान पैदा होता? तो उन्होंने कहा कि पेशाब, तो जो चीज ज्यादा नापाक है उससे ज्यादा पाकी हासिल करने की जरूरत होगी, जो चीज ज्यादा नापाक है उसे ज्यादा पाकी हासिल करने की जरूरत होगी। जी हाँ, वुजू और गुसल में ज्यादा पाकी किस में है? गुसल में है। तो अकल का तकाजा यह है कि जो ज्यादा नापाक चीज है उसके लिए गुसल हो, जो कम नापाक चीज है उसके लिए वुजू हो। आपके नाना ने कहा कि नहीं, मनी के लिए गुसल होगा और पेशाब के लिए वुजू होगा, हम इसी के मुताबिक चल रहे हैं। बाज दूसरी रिवायतों के अंदर, बाज दूसरे वाकयात भी हैं उसके अंदर, ये मसा अल खुफैन का मसला भी है। उन्होंने पूछा कि भाई मसा अल खुफैन, ये मोजे, मोजों पर, सॉक्स पर जो मसा करते हैं, लेदर सॉक्स पर मसा है शरीयत के अंदर, अहले सुन्नत का मसलक है ये। मसा अल खुफैन को शिया नहीं, दूसरे लोग नहीं मानते। तो मसा अल खुफैन का मसला ईजी नहीं होता, बहुत अहम है, हमारी पहचान और हमारा शिआर है वो, हमारे मसलक की पहचान है वो। तो उन्होंने पूछा कि ये जो मसाह करते हैं हम लोग लेदर सॉक्स के ऊपर, वो कौन से हिस्से पर मसाह की जरूरत है? जो तलवे में पड़ता है वो, या जो पंजे पे आता है वो? क्या कि ना, मैला तो जो होता है वो जमीन से लगा हुआ हिस्सा तलवा होता है, लेकिन हम मसाह करते हैं आपके नाना के बताने पर ऊपर के हिस्से का। अगर मुखालफत कर रहे होते तो ये बोलते मसाह ऊपर ने नीचे होना चाहिए। उन्होंने फिर अपनी तसल्ली और तशफी का इजहार किया, उठा और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपने करीब बिठाया, उनके माथे को चुमा। गलत फहमी फैलाने वाले लोगों ने जब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज भी इसी प्रोपेगेंडा के अंदर पड़े हुए। इलम बहुत ज्यादा था इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ज्यादा था। उसी हिसाब से तकवा था, उसी हिसाब से फिरासत थी, उसी हिसाब से जहन की रसाई थी, तेजी थी, शहाबियत थी उसकी। इबादत का यह हाल था कि जिन चार उम्मत के जिन चार अफराद में के बारे में ये बात मशहूर है कि ये लोग एक रात में कुरान पढ़ते थे, उनमें से एक इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक रात में पूरा कुरान पढ़ते थे 30 पारे, एक दिन पढ़े ऐसा नहीं, क्योंकि एक दिन पढ़ने वाले आज भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको, हैं 40-40 साल तक इनके इमाम रहे, 55-55 हज इन्होंने किए, लाखों ने करोड़ों ने अरबों की रकम को इन्होंने दीन पर खर्च किया। इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तो अपनी जरूरत का रख करके बाकी दीन और अहले दीन बिलखसूस उलमा और मुहद्दिसीन की खिदमत में भेज देते थे। बाज दफा और मुहद्दिसीन आपस में जिक्र करते थे हनीफा के तोहफों का, तो इस अंदाज से कर देते, तुमको पता है हनीफा ने नौमान बिन साबित ने क्या भेजा है, इस अंदाज से जिक्र करते थे। यानी ऐसी खतीर रकमें, ऐसी कीमती हदाया उनको पेश करते थे कि देख के दूसरों का रश्क आता था इनके लिए, अपनी माल की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, खाने का सोने का जो मामूल था, रात रात भर नहीं सोते थे, और एक दिन हफ्ते में एक दिन ऐसा नहीं है, महीने में एक दिन ऐसा नहीं, साल में एक दिन, 40 साल का मामूल लिखा हुआ है, 40 साल का मामूल था, रात भर नहीं सोते थे, और कहते थे कि मैं दिन में कैलूला भी जो करता हूँ सुन्नत नहीं होता तो वो भी नहीं करता। एक दहरिया उनके जमाने में आया, दहरिया वो जो खुदा को भी मानने से इनकारी है, उनको खुदा की भी जरूरत नहीं है ही नहीं। उसने कहा कि भाई मेरे कुछ बातों का जवाब दो, भाई मशहूर है वाकया, शायद सब आप जानते हो, मेरे तीन सवाल हैं। नंबर एक, अगर खुदा है तो बताओ उस खुदा से पहले क्या था, अगर खुदा है तो बताओ उसका चेहरा किस तरफ है, और अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहे हैं। उलमा सब हैरान, क्या जवाब दें इसका। उन्होंने कहा कि ठीक है, जरा पहले एक काम करो, तुम खड़े होके अपना आप दिखा के मेंबर पे, फिर जो है ना लोगों से ये सवाल कर रहे हो, अब इसका जवाब देने के लिए मैं वहां आता हूँ, तुम जरा नीचे आओ। उनको ऊपर, खुद ऊपर बैठ गए मेंबर पर, और उनको नीचे बिठा कर, उसको नीचे बिठा कर फिर उन्होंने जवाब दिया, सवाल दोहराओ। उसने कहा कि बताओ खुदा है, हाँ है, तो उससे पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। कहा कि खुदा की बात तो छोड़ो, अरे बोलो 10 तक गिनती आती है, हाँ आती है, गिनो। बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोले उल्टा हो तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोले एक से पहले क्या था, कुछ भी नहीं। मखलूक में ऐसी मिसालें मिलेंगी कि उनसे पहले कुछ नहीं है, तो खालिक को कहां कियास करने बैठ गए कि उससे पहले ढूंढने की उसकी तलाश है। लैसा कम इसलिए शय जिनकी शान है, मशगला या जब सौंप दिया है यारो, उम्र भर सोचते रहिए कि वो कैसा होगा। लैसा कम इसलिए शय, तो जिनकी शान लैसा कम इसलिए शय है, उनके बारे में कियास तुमको, तुमको ये चाहिए कि वो उससे पहले क्या था। उसकी मखलूकात में तुमको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि उसका कोई, उससे पहले किसी का वजूद नहीं, उससे अल्लाह से पहले भी किसी का वजूद नहीं। एक सवाल हो गया, हाँ हो गया, मिल गया जवाब, जवाब भी मिल गया। दूसरा सवाल, बोले अल्लाह है, हाँ है, तो बताओ उसके चेहरे का रुख किस तरफ है, अल्लाह के चेहरे का रुख किस तरफ है। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने शमें जल रही हैं, जो कैंडल होता है वो कैंडल जल रही, वो बताओ उसकी जो आग और लौ है उसका रुख किस तरफ है। हर तरफ है, किसी एक तरफ मुतायन कर सकते नहीं, तो मखलूक के चेहरे का डायरेक्शन तुम डिसाइड नहीं कर सक रहे कि किस तरफ है, खालिक का करने बैठे, बेसिमत है वो, बेजहत है वो, लामकान है वो। तीसरे, अल्लाह अब क्या कर रहा है। मैंने कहा कि तुमको नीचे बिठा के मुझे ऊपर मेंबर पे बिठाया, तुम्हें जलील करके मुझे इज्जत बख्श रहा है। बादशाह वक्त ने एक दफा अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और ये बोल के तलाक दिया, अगर आज की रात सुबह होने तक तो मेरी मिल्कियत से बाहर नहीं गई, तुझे तलाक। सुबह होने से पहले, फजर होने से पहले, रात को झगड़ा हो गया, पता नहीं किस बात पे हुआ, तो उसने कहा फजर होने से पहले मेरी मिल्कियत से नहीं, अगर नहीं निकले तो तलाक। अब बादशाह की मिल्कियत इतनी ज्यादा है, उसकी सल्तनत और हुकूमत इतनी दूर तक है कि एक रात में वहां से नहीं निकल सकते। उलमा से मसले पूछ पूछ के थक गए रात भर, ख्याल आया उमर बिन साबित से भी एक दफा पूछ लेते हैं, मेरे पास गए, बोले मसला ही नहीं है भाई, जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, जाओ मस्जिद में बैठ जाओ। क्यों? बोले मस्जिद पे कौन दावा करेगा मिल्कियत और सल्तनत का। मिनटों में, चुटकियों में मसलों को हल फरमा देते थे। एक आदमी बहुत सारे सवाल लेकर आया, نے کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں، آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے یہ عقائد ہیں؟ پھر اس نے تفصیلات بیان کی، تو تفصیلات میں کہا کہ وہ جو ہے نا جنت کا شوق نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، پروردگار سے بھی نہیں ڈرتا، حق سے نفرت کرتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، بے شمار فہرست ہے اس کی، تو اس نے ذکر کیا، بتاؤ ایسے کیا کیا حکم ہے؟ تو وہ جو آنے والا سائل تھا، ظاہر ہے ان کی آزمائش جانچنے کے واسطے آئے امام علی رحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا جواب دو اس کا کیا حکم ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ جیسی باتیں یہ بتا رہا ہے، اگر ایسا کوئی واقعتاً آدمی ہے تو ایسے عقائد تو کسی مسلمان کے ہو نہیں سکتے، لگتا تو کافر ہی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم کو اور علم کے استحضار کو آپ اندازہ کریں، انہوں نے جو جوابات دیے کافی لمبی فہرست ہے، وہ مجھے دو چار چیزیں اس میں سے یاد ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ نے کہا کہ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ وہ جنت کا شوق نہیں رکھتا، مالک کے جنت کا شوق رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے مشرک ہونا، کافر ہونا۔ وہ جہنم کا خوف نہیں رکھتا، وہ مالک جہنم کا خوف رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کافر ہونا۔ نہیں نہیں، یہ بھی یہ جو معنی بتایا آپ، یہ فٹ نہیں بیٹھتے اس پہ۔ کیوں؟ آگے اس نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ پروردگار سے بھی نہیں ڈرتا تو وہ مالک جہنم سے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر نے کہا کہ مالک جہنم سے ڈرتا تو ہے وہ، لیکن اس کی طرف سے ظلم سے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے وہ ظالم نہیں ہے، مالک جہنم سے وہ نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے۔ پروردگار سے نہیں ڈرنے کا مطلب ہے پروردگار کے ظلم سے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے، اطمینان ہے کہ وہاں صرف انصاف ہوگا، انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہاں ربو کا بزلہ میں للعبید۔ وہ حق سے نفرت کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے مشرک ہونا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ موت حق ہے، کس کو پسند ہے؟ موت حق ہے، کس کو پسند ہے؟ بولے رحمت سے بھاگتا ہے، بولے بارش رحمت ہے، کون بھیگنا چاہتا ہے؟ عجیب و غریب فراست ان کی تھی، عجیب و غریب ذہانت ان کی تھی، بے شمار واقعات ان کے اس قسم کے ہیں۔ تو ان کی تقویٰ طہارت کو دیکھ لیں، ان کی دل کی سخاوت کو دیکھ لیں، ان کی راتوں کی عبادت کو دیکھ لیں، ان کے کھانے پینے کے معمولات کو دیکھ لیں، ان کی اتباع شریعت کو دیکھ لیں، ان کے علم کو دیکھ لیں اور علم کی سقاحت کو دیکھ لیں، ان کے علم اور احادیث کی سند کو دیکھ لیں، اور سند کے علاوہ ان کے جو ہم اثر علماء ہیں ان علماء کا ان پر اعتماد دیکھ لیں، ان کے زمانے کے علماء ہیں ان علماء کا ان کے اوپر اعتماد دیکھ لیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم اثر علماء کا اعتماد ہونا۔ میں نے امام مالک کی ایک مثال دی ہے، ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اگر جمع کرتے ہیں مزید بے شمار خوبیوں کے ساتھ میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، فقہ کے معاملے میں سارے امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں، عیال فقہ کے معاملے میں، نقطہ سنجی میں، خوش فہمی میں، یعنی قرآن و حدیث کے سمجھنے کی جو اچھی صلاحیت ہے اس کے اندر سارے کے سارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، وہ سارے امام علی فرقلال کے بچے ہیں۔ البانی علیہ الرحمہ، چونکہ حدیث میں بے شک ان کی خدمات رہی ہیں، محدثین ماضی قریب کے حدیث پر جن کی کافی گہری نگاہ تھی ان لوگوں میں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی مقلدین کا اور ائمہ مجتہدین کا کچھ اس انداز سے تذکرہ ان کی طرف سے بھی ہوتا رہا کہ ان لوگوں کو بڑا مواد ملا غیر مقلدین کو، گمراہ فرقوں کو۔ ان کی کتابوں میں ایک جملہ ملتا ہے، تفقہت بفقہ ابو حنیفہ، ابی حنیفہ، میں نے بھی فقہ کا علم حاصل کرنا ہے، وہ ابو حنیفہ کے فقہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ گالیاں اپنی جگہ ہیں لیکن اس سے استغنا نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا باقیہ ائمہ ہو، ان ائمہ کی تشریحات پر اعتماد ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا جو مطلب بتایا ہے وہ مطلب ہمارے اتباع کرنے اور اس کے حساب سے چلنے کافی ہے۔ دو تین سوالات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، بھئی یہ کیا بات ہے، چاروں ائمہ ہیں تو پھر اس میں تم انہی کی تقلید کیوں کرتے ہو، انہی کے پیچھے کیوں چلتے ہو، چاروں کو مانو یا سب کو مانو وغیرہ وغیرہ۔ मैंने आपको जो खसूसियात बताई हैं वो खसूसियात किसी और में नहीं है, इसलिए हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। तो फिर शवाफे को, इमाम शाफी को क्यों मानते हैं वो उनसे पूछिए, इमाम शाफी के मानने वालों से पूछिए, उसका जवाब देंगे। बाकी अगर हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई देखिए, इन लोगों का आपस में थोड़ा बहुत जो मसाइल का इख्तलाफ है, अकायद में तो कुछ भी फर्क नहीं है, मसाइल का जो इख्तलाफ है वो मसाइल का इख्तलाफ तहकीक का अंदाज अलग अलग है, तहकीक का मेयार, इस्तेदलाल का मेयार अलग अलग है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबिई हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबिई हैं, बाकी तीनों ताबिई नहीं है। वो खैरुल कुरून के जमाने के हैं, 25 मुहक्किक उलमा ने कहा यह ताबिई है, क्योंकि उनकी ताबियत को लेके भी लोग बोलते हैं ताबिई नहीं है और बातों को फेरने जाते हैं। मुहक्किक उलमा, इसके नाम जो है ना कुछ सुन लें, इब्ने हजर मक्की उनके अंदर आते हैं, इब्ने हजर अस्कलानी उसके अंदर आते हैं, शहाबुद्दीन कस्तलानी उसके अंदर आते हैं, बदरुद्दीन आइनी उसके अंदर आते हैं, उनके मतलब उस फहरिस्त के अंदर आते हैं, शमसुद्दीन ज़हबी उसके अंदर आते हैं, अल्लामा मिज़ी उसके अंदर आते हैं, ज़ैनुद्दीन इराकी उसके अंदर आते हैं। ये बहुत, ये छोटे नाम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे नाम नहीं है, ये हजारों लोगों का इल्म पी के जो बैठे हुए हैं उनके नाम है ये। उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबिई है, उनकी तहकीक है ये। खतीब बगदादी, इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर को बड़ा मानते हैं लोग, बेशक मानना भी चाहिए, है भी वैसी तफसीर वो, अल्लामा इब्ने कसीर वो कहते हैं हनीफा ताबिई। अब वो हदीस से इसको जोड़ें, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना फरमाते हैं मेरा जमाना सहाबा वाला, सुम्मल लजीन यलूना हूं, फिर ताबेईन का जमाना, सुम्मल लजीन यलूना हूं, फिर तबे ताबेईन का जमाना। तो वो जो दूसरा खैरुल कुरून का जमाना है ना, उसके जुमरे में, उस तबके में ही आते हैं, और खैर के साथ आते हैं, शर के साथ नहीं। गुमराह फिरके भी हुए हैं, वो उसके बानी नहीं है, खैर के बानी है वो, इमाम मुज्तहिद है, मुज्तहिद मुतलक है वो। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तशरीहात को हम तरजीह देने की कई सारी वजूहात हैं, हम देते हैं इस बुनियाद पे, बाकियों को नहीं देते हैं, नहीं देने की वजूहात ये, वहां पर ये बातें नहीं मिलती हैं। फिर वो लोग, उन लोगों को ये इमाम हनीफा की खूबियां नजर नहीं आई, खूबियां नजर आई हैं, लेकिन कुछ दूसरी तकवीनी और कुछ दूसरी मसलहतें ऐसी रही हैं जिसकी बुनियाद पर सब लोगों ने अपने अपने इमामों को चूज किया और फॉलो किया उनको, उसमें कोई मसला नहीं है। एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने काबिल एतमाद, तो फिर सियाहे सित्ता में उनका जिक्र क्यों नहीं है, सियाहे सित्ता में उनका जिक्र क्यों नहीं है, उनकी सनद का क्यों नहीं आता, जब बड़े बड़े मुहद्दिस उनसे हदीस ना कह रहे हैं, हमने हदीस सुना, उनका जिक्र क्यों नहीं आ रहा। ये सवाल का जवाब बाद में, सवाल पे सवाल पहले। कोई किताब ऐसी है जो हनफियों की सनद के बगैर हो, यानी किसी किताब की सनद में, कोई भी किताब ऐसी है इनसे छह किताबों में से जिसके अंदर हनफी रावी बीच में नहीं पढ़ता हो, कोई भी नहीं है। जवाब मिल गया, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्म उनके पास है, उनका नाम अगर नहीं लिया गया तो क्या मसला है। अब नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, जैसे बहुत सारी बदगुमानियां दूसरे लोगों को फैला करके उसके अंदर मुब्तला किया गया था, इमाम हदीस को भी किया गया, फिर उनकी अपनी एहतियातें थी कि भाई इन पर लोग बार दफा, एक आदमी हमारी नजर में काबिल एतमाद है, ये बंदा ये काम कर सकता है, लेकिन इसको जिन लोगों के साथ काम करना है, एतमाद में लेना है, उनमें से बाद इस पे एतमाद नहीं करते, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि ऐसे आदमी को इस काम के लिए अपॉइंट करूं जिस पे बाज लोग एतमाद नहीं करते। सनदों के अंदर उन्होंने ऐसे लोगों को लिया है जिस पे सब एतमाद करते हैं कि उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री कोई भी नहीं करता है, तो उन्होंने उसको जिक्र कर दिया है। ऐसी बात चीजें हैं जो हमारे इल्म में रहना चाहिए। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो या दूसरे इमाम किराम हो, उनकी जो हम तकलीद करते हैं, उस तकलीद का माना सिर्फ क्या है समान साहब, तकलीद का माना क्या है, खामोशी से सुनना,
तशरीफ एतमाद,
जी जी एतमाद करना, एतमाद करना, हम एतमाद ही करते हैं। बात किसकी मान रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह की और सिर्फ अल्लाह के रसूल की। और बात मानने, इताअत और इत्तबा का जो हक है ना, वो सिर्फ अल्लाह का है। ये थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से भी सुनना और थोड़ा सुनने में गड़बड़ भी नहीं करना, समझने में गड़बड़ भी नहीं करना। क्या सुनने का हक सिर्फ अल्लाह का है, सिर्फ का मतलब समझ गए होंगे आप, तो अब जहन जाएगा तो क्या अंबिया की फहरिस्त भी खारिज, असल के एतबार से वो भी खारिज, असल के एतबार से वो भी खारिज। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये इल्ला लिल्ला इन के साथ में जो आया इसका मतलब ये है, इज़ इय्याका नअबुद, असल हक अल्लाह का है, फिर इनको जो मानते हैं इसलिए कि मैं उतरे रसूल फकत अता अल्लाह, वो अल्लाह का रास्ता अल्लाह तो नहीं दिखाएंगे, अल्लाह का रसूल दिखाएगा, तो इनके पीछे पीछे चलो मेरा ही रास्ता समझा जाएगा। अल्लाह के रसूल हमारे सामने नहीं है, सहाबा हमारे सामने नहीं है, और सहाबा की जो तशरीहात हम तक पहुंची वो वास्तव से पहुंची है, तो जाहिर है हमें उन्हीं वास्तवों उन्हीं उसी लिंक को लेके चलना है। तो वो जो लिंक इमाम अबू हनीफा से हमको पहुंचा हम उसको मानते हैं, बस इतनी सी बात है। वो जो तशरी उनकी तरफ से आई है हम उसको मानते हैं। तो इयाका नाबुदु के हवाले से इबादत में आजिजी है ये सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, और इबादत के हवाले से एक और चीज भी है वो ये हलाल व हराम करने का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है, यानी इस चीज का इख्तियार किसी और को समझते हैं तो ये भी शिर्क में आता है। कुरान ने कहा कि ईसाई मुशरिक हैं, उन्होंने अपने उलमा को खुदा बना लिया है, तो बाज ईसाई जो बाद में मुसलमान और सहाबी बन गए उन्होंने पूछा कि हम तो ऐसा नहीं करते थे, तो कुरान ने ये क्या कह दिया? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बोलो तुम्हारे उलमा अगर किसी चीज को हलाल चीज को हराम बोलते थे तो तुम उसको हराम समझते थे या नहीं? तो कहा कि हाँ समझते थे। तो हलाल और हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है, अगर किसी हलाल चीज को वो हराम बोलेंगे और तुम हराम समझोगे उनके बोलने पे तो उनको खुदा बनाना ही समझा जाएगा। एक और फर्क इसी जमीन में निकलेगा, क्या? एक होता है हलाल और हराम बताना और एक होता है हलाल और हराम बनाना, बड़ा फर्क है दोनों में। हलाल और हराम बनाना सिर्फ अल्लाह का हक है, और हलाल और हराम बताना ये जो भी अहले इल्म होंगे उनका हक है। उम्मत को बड़े उलमा का तबका जो है ना बड़ा मलामती तबका है, मलामत करने वाला नहीं, वो तबका जिस पर मलामत होती रहती है, जिसका कहीं और बस नहीं चलता, इसकी कहीं और बस नहीं चलती, वो अपनी ट्रक लाके चला देता है। घर में बीवी बच्चे उनकी नहीं सुनेंगे, वो सुनाना चाहेंगे उलमा को, अपने बड़े उनके बड़े खानदान के दोस्तों में किसी हल्के में उनकी हैसियत नहीं हुई, ऐसे बेहसियत लोग अपनी हैसियत जमाने बात करेंगे उलमा पर। बहरहाल तो हलाल और हराम बनाने और बताने, ऐसे ही मामला कुफर की तरफ जाता है, तो काफिर बनाने और बताने का जो फर्क है इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए। दो बातें, एक है बताना और एक है बनाना। अगर कोई आलिम समझे कि मैं बना सकता हूं, काफिर है वो, आलिम नहीं है वो, तो जो काम हम उलमा करते हैं फिर वो क्या है? वो बताने वाला काम है, तो उम्मत उनको फिर इल्जाम क्यों देती है? क्योंकि उम्मत को इतनी भी समझ नहीं है कि बताने और बनाने में फर्क क्या है। अल्लाह ताला हम सबको हक ताला ही की इबादत की तौफीक मरहमत फरमाए, शिर्क और उसकी जुमला किस्मों से हमारी हिफाजत फरमाए। इस हवाले से हम में जो गलत फहमियाँ फैली हैं या जहन के गुशे में किसी के भी मौजूद हैं या फैलाई जाती हैं, अल्लाह पाक उस उम्मत की हिफाजत फरमाए।